ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू। सातों प्रदेशों में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। भूमि समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का स्थानीय तहों से भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल का आग्रह। और म्यांमार के बौद्ध मठ पर हुए हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा द्वारा केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू हुई है। रासोपा कार्यशाला नीति संगठन और नेतृत्व श्रृंखला एक नामक इस कार्यशाला में पार्टी की नीति संगठन सुदृढ़ीकरण और नेतृत्व क्षमता विकास के विषय पर चर्चा हो रही है। ये जानकारी रासोपा के संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्योपाने ने दी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सातों प्रदेशों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने की बात कही है। आज कैलाली के धनगढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति गंभीर है और इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म संबंधी नीति को नए शिक्षा कानून में शामिल किया जाएगा। मंत्री पोखरियाल ने ऑटिज्म संबंधी तैयार किए जा रहे मानकों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव देने का आग्रह भी किया। गृहमंत्री सुधंग गुरुंग ने जघन्य अपराध रोकने के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत व्यवस्था करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 3 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध से खुद को बेहद दुखी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना में कानून के तहत मिलने वाला अधिकतम न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सरकार ने पिछले अनुभवों और कमियों से सीख लेते हुए घटना की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा है कि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान सरकार की उच्च प्राथमिकता में है और स्थानीय तहों को भी इसी के अनुरूप सहयोग करना चाहिए। कैलाली के धनगढ़ी उप महानगर पालिका में आज आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अव्यवस्थित बसवासी और भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरण के लिए आवश्यक सहजीकरण और समन्वय करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इससे पहले भूमि समस्या समाधान समिति कैलाली की बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार 600 दिनों के भीतर लाल पुर्जा वितरण पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने जिले के सभी स्थानीय तहों में भूमि संबंधी समस्या समाधान के लिए सहजीकरण करने का समिति से आग्रह किया। मंत्री रावल ने कहा कि भूमि समस्या समाधान के लिए आवश्यक संसाधन और जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए सरकार तैयार है। एक अन्य प्रसंग में मंत्री रावल ने बताया कि सहकारी पीड़ितों की बचत राशि वापस करने का काम शुरू हो चुका है और अब तक 4000 सहकारी बचतकर्ताओं की रकम वापस की जा चुकी है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि अब व्यक्तिगत स्वार्थ और एक दूसरे पर दोषारोपण से ऊपर उठकर पार्टी और देश के हित के बारे में सोचने का समय आ गया है। नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयंत्र द्वारा आज भक्तपुर के नगरकोट में आयोजित 2 दिवसीय जनसंगठन समन्वय संयंत्र कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करने वाले तत्वों को इन बातों को समझना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि सरकार को देश और जनता के हित में काम करना चाहिए और इसके लिए विपक्ष लगातार सरकार को खबरदार करता रहेगा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने कोशी प्रदेश के विद्युत आपूर्ति प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित विश्वसनीय तथा प्रभावी बताते हुए बिजली की खपत बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। कोशी प्रदेश के भ्रमण के दौरान आयोजित चर्चा में उन्होंने विद्युत आपूर्ति में देखी गई समस्याओं, स्थानीय लोगों की शिकायतों और कर्मचारियों की समस्याओं की पहचान कर तत्काल समाधान करने का निर्देश किया। मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह सुनसरी के भोकराहा नर सिंह गांव पालिका 4 स्थित सुनसरी खोला तटबंध क्षेत्र का आज स्थलगत निरीक्षण करने के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में मंत्री श्रेष्ठ ने बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन और सिंचाई विकास के कार्यों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिजियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चितवन के खैरहनी नगरपालिका एक स्थित तरकारी चौक के पास पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर आज बस और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। नारायणगढ़ से बर्दिवास की ओर जा रही बस और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल के बीच टक्कर होने पर मोटरसाइकिल चालक करीब 32 वर्षीय पुरुष और पीछे सवार करीब 26 वर्षीय महिला की मौत हुई है। चितवन पुलिस कार्यालय के अनुसार उपाधीक्षक चंद्रभूषण यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल दोनों की उपचार के दौरान मौत हुई है। मृतकों के नाम उपनाम और पता अभी तक पता नहीं चल सका है। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की करीब 900 उन्नत किस्म के विकसित की है। परिषद के तकनीकी अधिकारी ऋषि राम अधिकारी ने बताया कि तराई से लेकर उच्च पहाड़ी क्षेत्रों तक विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल रोग प्रतिरोधी तथा अधिक उत्पादन देने वाली इन फसलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान पूरा कर खेती के लिए सिफारिश की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के मध्य सागाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर सैन्य हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले के समय मठ में करीब 100 लोग एक सप्ताह के ध्यान साधना कार्यक्रम में शामिल थे। ये कार्यक्रम बौद्ध लेंट के अवसर पर आयोजित किया जा रहा था। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। म्यांग टाउनशिप का स्लेव लेओ गांव मंडेले से करीब 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद जारी संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित है। सेना और लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष के दौरान हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। म्यांमार की सेना की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के केंद्रीय सदस्यों के लिए आयोजित नीति संगठन और नेतृत्व संबंधी 2 दिवसीय कार्यशाला काठमांडू में शुरू। 7 प्रदेशों में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। भूमि समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का स्थानीय तहों से भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल का आग्रह और म्यांमार के बौद्ध मठ पर हुए हवाई हमले में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।